So we will sing this small bhajan, invoking the blessing of Sri Gauranga Mahaprabhu. You can see it on the screen. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गौरंग करुणा करो दीनहीन जाने मुसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवन
गौरंग करुणा करो
गौरंग
करुणा करो पतित प्रभु नाही त्रिण धरी गोरा डाकी है तुम्हारे कृपा करिए स्वयामार हृदय मंदिर
धरी गोरा डाकी है
त्रिण धरी गौरा राखी है तुम्हारे कृपा करिए स्वयामार हृदय मंदिर पतित देखिया पतित पवन नाम किसरे लगिया दया ना करिबे पतित देखिया पतित पवन नाम किसरे लगिया तूफाने नाही कनिस्तार श्री चरण तरणी दाने दा আকাশ করো পার, পড়িছি ভব তুফানে নাহি নিস্তার, শ্রী চরণ তরণি দানে দাস করো পার, চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদান প্রার্থনা করে সদা নরোত্তম
দাস,
শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদান প্রার্থনা করো সদা
Hare Rama
कीर्तन यज्ञ की
जय।
श्री गौरांग महाप्रभु की
जय।
श्रील प्रभुपाद की
जय।
गौर प्रेम ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम।
आराध्य भगवान व्रजे सतनया तद्धाम वृंदावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गे नया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेम पुमर्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रार्दरानपर। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये।
श्रूयतां श्रूयतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्त्यतां चिन्त्यतां भक्तश्चैतन्यचरितामृतम्। हरे कृष्णा। हम सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में, और अगले रविवार को हम श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस मनाएंगे, जो हमारे लिए नया साल भी है, हैप्पी न्यू ईयर। तो गौड़ीय वैष्णवों के लिए जो नया साल है वो श्री गौर पूर्णिमा से शुरू होता है, और गौर पूर्णिमा गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। जन्माष्टमी हम बाहर वालों के लिए मनाते हैं, लेकिन राधाअष्टमी और गौर पूर्णिमा हम हमारे लिए मनाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, और क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए ही हैं इस धरातल पे लोगों को कृष्ण प्रेम बांटने के लिए, इसलिए हम लोगों को बुलाते हैं उसके अंदर और बड़े जोर शोर से इस कार्यक्रम को करते हैं ताकि सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो क्योंकि गौर पूर्णिमा अभी आ रहा है, थोड़ा सा हम उसके प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं, थोड़ा तैयारी के लिए। तो क्योंकि इस बार मेरा टर्न था, सिद्ध गौरांग प्रभु ने मुझे कहा, तो मैं सोचा एक छोटे से टॉपिक पे हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं, उस व्यक्तित्व के बारे में जिसने हमको बताया कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारा कैसा मूड होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए। और जैसा मैं हर बार बताता हूँ कि हम जब भक्तों के संग में आते तो हमारा मूड वैसा होना चाहिए जैसा कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, ना कि हम होटल में जा रहे हैं। तो इसीलिए ये व्यक्तित्व जो है ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शक्तिशाली, अपार शक्ति जिसके पास है प्रबल मात्रा में, वह व्यक्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए कितने ललायित है, कितना प्रयास कर रहे हैं, और किन किन समस्याओं से गुजर के और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा,
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा,
जय द्वैत चंद्र
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा।
तो ये जो लीला है वो हम कहने जा रहे हैं, उस व्यक्तित्व का नाम है महाराज प्रताप रुद्र। महाराज प्रताप रुद्र उड़ीसा के जो राजा थे, और उड़ीसा उनका जो प्रांत था वो पूरा पूर्व भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, मद्रास तक उनकी सीमाएं थी, जहां पर रामानंद राय उनके गवर्नर थे। तो वो कोई टू बेडरूम या वन बेडरूम या स्टूडियो फ्लैट में रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। अपार धन था उनके पास, अपार शक्ति थी, और इतनी शक्ति थी कि मुगलों ने और अंग्रेजों ने मिलकर कभी जगन्नाथपुरी पर आक्रमण नहीं किया, कभी जगन्नाथपुरी पे अटैक नहीं हुआ, उड़ीसा अजय रहा हमेशा। उत्कल प्रदेश जो है वो उसका कर्ता धरता, और अभी भी जो जगन्नाथपुरी की जो व्यवस्था है वो वैसी की वैसी चली आ रही है जो उस जमाने में चलती थी भगवान के। आज भी वो लोग जो दूसरी सब्जियां है वो यूज नहीं करते, और बाकी सब जो कुछ भी है, और उस सेवा पूजा को करवाने वाले थे महाराज प्रताप रुद्र, बहुत ही शक्तिशाली। और ऐसे महाराज प्रताप रुद्र जब उनको पता चलता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनके प्रांत में आए हैं उड़ीसा में, तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य को अपना गुरु मानते थे, गुरु थे उनके, तो सार्वभौम भट्टाचार्य को वो पूछने लगे, पूर्वे अभी महाप्रभु चलिला दक्षिणे, प्रताप रुद्र राजा तबे बोलैला सार्वभौम। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आके और दक्षिण भारत की यात्रा पे गए, उस टाइम उनके स्निग्ध और उनके प्रेमी भक्तों ने बहुत चैतन्य महाप्रभु से याचना की कि आप मत जाइए, आप यहीं पर रहिए। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने स्निग्ध, अपने निकटतम और अपने प्रेमी भक्तों का संग परित्याग करके, उनका संग विच्छेद करके, और वो दक्षिण भारत के लिए चले गए। तब प्रताप रुद्र महाराज आए और सार्वभौम भट्टाचार्य को बोलने लगे कि वसित आसन दिला करी नमस्कार महाप्रभुर व्रत तबे पूछिला तहारे। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और महाप्रभु के बारे में पूछने लगे और वो कहने लगे कि हे सार्वभौम भट्टाचार्य, सुनाइला तुम्हारा घर एक महाशय गौड़ है ते आइला ते हो महाकृपा मय। कि हे सार्वभौम भट्टाचार्य, मैंने सुना है कि आपके घर में एक महाशय आए हैं और वो बहुत कृपामय है। तो उनको पता चलता है कि हाँ, वो आए तो थे महाराज, लेकिन वो दक्षिण भारत चले गए। तो प्रताप रुद्र महाराज बड़े विक्षेप में हो गए और वो कहने लगे, अरे सार्वभौम भट्टाचार्य, तुमने उनको जाने क्यों दिया, जाने क्यों दिया? अरे उनके पैर पकड़ना था, उनको पैरों में गिर जाना था और उनसे निवेदन करना था कि आप जाओ मत। और जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि महाप्रभु गए हैं दक्षिण भारत पे तीर्थ यात्रा के लिए, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और महाराज प्रताप रुद्र सोचने लगे, अरे तीर्थ यात्रा, जगन्नाथपुरी से बड़ा तीर्थ कौन सा है? जगन्नाथपुरी में भगवान स्वयं विराजते हैं, कलयुग का धाम है, उसको छोड़ के और कौन से दूसरे तीर्थ में गए हैं? तब भट्टाचार्य ने कहा कि नहीं, वो स्वतंत्र ईश्वर है, वो तीर्थ यात्रा का तो केवल बहाना है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को कोई नहीं रोक सकता, वो स्वतंत्र ईश्वर है और जब अपनी इच्छा होती है वो वैसा कार्य करते हैं। तो उनको रोकने के लिए महाराज प्रताप रुद्र कहते हैं, राजा कहे तहरे तुमी याइता कहले दिले पाए पड़ी यत्न करी केनो ना राखीले। कह रहे उसको जाने क्यों दिया, उसके पैर पड़ जाना था और पैर पड़ के उनको यातना करनी थी। और ये सत्य है कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को रोकने का बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया, उनके पैरों में गिर पड़े, 3 दिन तक अपने घर पे बिठा के रखा और इतनी अनुनय विनय करके और उनको बोले कि नहीं महाप्रभु, आप हमारे को छोड़ के मत जाओ। लेकिन महाप्रभु ने कुछ सुना नहीं, खड़े हुए और वो चले गए। और सार्वभौम भट्टाचार्य की ऐसी अवस्था हो गई कि खड़े खड़े मूर्छित हो गए, वो गिर पड़े। सोचो सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि बृहस्पति के अवतार है, इतने ज्ञानवान, वो उनका ज्ञानवान सब खत्म हो गया महाप्रभु के सामने, और वहां पे धराशायी होते हुए जोर से धड़ाम करके धरती पे मूर्छित होकर गिर पड़े महाप्रभु के विरह में। और महाप्रभु ने ऐसे भागे, चैतन्य चैतन्यमृत वर्णन करता है कि वो ऐसे भागे कि पीछे मुड़ के उन्होंने देखा नहीं, कहीं देखा कि वापिस आके पकड़ नहीं ले, और तुरंत भाग गए अपने प्रेमी भक्तों को छोड़ के। तो ये जो बात उनको पता चली तो भट्टाचार्य उनको कहने लगे, भट्टाचार्य कहे तेन स्वयं ईश्वर स्वतंत्र साक्षात श्री कृष्ण तेन हो नहे पर तंत्र। कि वो साक्षात ईश्वर है, श्री कृष्ण है और उनको कोई नहीं रोक सकता। तथापि राखी ते तारे बहु यत्न कैलिनु ईश्वरे र स्वतंत्र इच्छा राखी ते नरिलिनु। वो कहे कि मैंने रोकने का बहुत प्रयास किया महाराज, उनके पैरों में गिर पड़ा, रोने लगा, बिलखने लगा, और मैंने बहुत यत्न किया कि वो रुक जाए, लेकिन वो ईश्वर स्वतंत्र इच्छा, उनकी इच्छा से वो चलते हैं और वो चल निकल गए। तारे उपेक्षिया कैला शीघ्र गमन के बुझिते पारे महाप्रभुर चित्त मन। तो उन्होंने बोला कि वो ऐसे दौड़े शीघ्र गमन, रुके नहीं, ऐसे भागते चले गए और श्री चैतन्य महाप्रभु का चित्त कौन जान सकता है। महाप्रभुर चित्तेर स्वयं ही है पुष्प सम कोमल कठिन वज्रमय। बोले महाप्रभु का चित्त तो ऐसा है महाराज कि कभी कभी पुष्प के समान कोमल है और कभी कभी वज्र के समान कठोर है। और जब महाराज प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य के मुंह से ये बात सुनी तो उन्होंने बहुत ही अच्छे उद्गार व्यक्त किए, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही सार्वभौम भट्टाचार्य को। उन्होंने कहा, राजा कहे मतलब महाराज प्रताप रुद्र बोल रहे हैं, राजा कहे भट्ट तुम्हें विज्ञा शिरोमणि तुम ही तारे कृष्ण कहो ताते सत्य मानी। उन्होंने कहा कि हे सार्वभौम भट्टाचार्य, आप इतने महान भक्त हो, महान पंडित हो, सभी सभी शास्त्रों के मर्मज्ञ हो, और क्योंकि आप कह रहे हो, क्योंकि आप मेरे गुरु हो, आप कह रहे हो कि वो कृष्ण है, इसलिए मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण मानता हूँ, क्योंकि आप कह रहे हो वो कृष्ण है तो वो कृष्ण होंगे। और प्रभुपाद यहाँ पर बहुत अच्छा परपट लिखते हैं, वेरी वेरी एक्सेलेंट ब्रिलियंट परपट। प्रभुपाद कहते हैं कि दिस इज द वे टू एडवांस इन स्पिरिचुअल साइंस, वन मस्ट एक्सेप्ट द वर्ड्स ऑफ एन आचार्य, ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर टू क्लियर द पाथ फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। However, one's guide must be a spiritual master who is actually an unalloyed devotee, strictly following the instructions of the previous acharyas without deviation. तो उन्होंने कहा कि पहला जो सबसे important कार्य एक साधक के जीवन में जो है वो है क्या है, श्रद्धा। अथवा श्रद्धा तथा साधु संग, जो वहां से शुरू होती है कि सबसे पहले important faith, श्रद्धा रखनी पड़ती है। और कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि हम श्रद्धा क्यों रखें, भगवान में श्रद्धा क्यों रखें, भगवान के भक्तों में श्रद्धा क्यों रखें, गुरु और वैष्णवों में श्रद्धा क्यों रखें। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में पग पग पर हम लोग श्रद्धा रखते आए हैं हर जगह पे, आप में से कितने लोग हैं जो सलून में जाते हैं, हाथ उठाओ, बाकी लोग नहीं जाते तो आप जब सलून में जाते हो तो क्या करते हो कि उस नाई को अपना सर समर्पित कर देते हो, सरेंडर कर देते हो, उसके हाथ में दे देते हो, और कई बार आप सो जाते हो अच्छी तरह से, और आप देखते हो कि उसके हाथ में छुरा है, चाकू है, ब्लेड है, और ऐसा धारदार चाकू है कि जरा सा लगाएगा तो अपना निताई गौर प्रेमानंद हो जाएगा, वहीं पे अपन सीधा गोलोक धाम पहुंच जाएंगे, है क्या नहीं। तो अपना पूरा सर उठा के जब यहाँ पर कृष्ण कहते हैं सरेंडर अन टू मी, तो हम लोग सर नहीं झुकाते, लेकिन नाई के पास जाके पूरा का पूरा सर झुका देते हैं, और जैसा बोलता है बोलता है इधर करो इधर करो इधर करो, ऐसा ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से उसको घुमाते रहते हैं, और अपना सर वहां पे सरेंडर कर देते हैं, वहां पर फेथ रखते हैं नाई पे, है कि नहीं, कि भाई वो छुरा हाथ में लिया है, ब्लेड है, लेकिन मारेगा नहीं। या हम लोग सब लोग आबू धाबी में इधर आए हैं इंडिया से और बांग्लादेश वगैरह से, और हम जब प्लेन में बैठे तो किसी ने जाके पूछा था क्या पायलट को कि भैया तुम्हारा सर्टिफिकेट दिखाओ, बरोबर प्लेन उड़ाना आता है क्या, कितना घंटे उड़ाया तुमने बताओ, कुछ क्रैश व्रैश तो नहीं किया, कोई जाके नहीं पूछते, खुशी खुशी बोर्डिंग पास लेते, जब बोर्डिंग पास मिलता है घर पे फोन करते हैं, अरे मिल गया बोर्डिंग पास, बैठ रहा हूँ अभी मैं, और अंदर बैठते और आराम से सो जाते अंदर जाके, और आके फिर इधर कितना हम लोग हर जगह फेथ रखते हैं, गाड़ी चलाते उसके ऊपर फेथ होता है, हर चीज पे फेथ होता है, लेकिन जब भगवान और वैष्णव और गुरु पे आने की बात होती है तो कई बार श्रद्धा नहीं होती है। तो ये श्रद्धा बहुत जरूरी है, ये हमारे जीवन का सबसे पहला लेसन है कि अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमको भगवान पे, गुरु पे, भक्तों पे श्रद्धा रखनी पड़ेगी। सो महाराज प्रताप रुद्र, और वो मैं जैसा पहले कह रहा था कि वो छोटे मोटे आदमी नहीं थे, स्टूडियो फ्लैट में रहने वाले, अपार संपदा थी उनकी, इतना धन था कि उनको भी पता नहीं था कि मेरे पास कितना धन है कि नहीं। ऐसी बहुत लोगों की इच्छा होती है, ऐसा कोई है यहाँ पे हॉल में बैठा हुआ जिसको ये नहीं मालूम कि मेरे अकाउंट में पैसे कितने हैं, एवरीवन नोस कि हमारे अकाउंट में कितने हैं, ऐसा कोई है कि मेरे को पता ही नहीं है मेरे अकाउंट में कितने पैसे, सबकी इच्छा होती है कि ऐसा हो, लेकिन जिंदगी गिनने में चली जाती है, और ऐसा दिन कभी आता नहीं है जब हमारे पास अपार संपत्ति है। ऐसी अपार संपत्ति थी महाराज प्रताप रुद्र के पास, जिनको पता ही नहीं था कि मेरे जगन्नाथपुरी आज भी विश्व का सबसे संपन्नशाली मंदिर है, बहुत अंदर खजाना पड़ा हुआ है, पता ही नहीं लोगों को क्या क्या है क्या नहीं है। वह महाराज प्रताप रुद्र, और जब किसी के पास इतना सारा खजाना होता है, इतना सारा धन होता है, तो उसका दिमाग जो होता है वो सठिया जाता है, एकदम पूरा सातवें आसमान पे जाता है, और उसको लगता है कि कौन मुझे समझाएगा, कौन मुझे बताएगा, हाँ मैं जो चाहूँ वो खरीद लूंगा, पैसे दूंगा, डॉक्टरेट का सर्टिफिकेट मेरे को मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसा दे दे के सर्टिफिकेट खरीदी है, और उसको लगता है कौन मुझे समझाएगा। लेकिन यहाँ पे महाराज प्रताप रुद्र वैसा नहीं सोच रहे हैं। तो जब ज्यादा एजुकेशन मिल जाता है, बहुत धन आ जाता है, बहुत अच्छा रूप होता है, तो कुंती महारानी कहती है भगवान के पास नहीं जा सकते आप लोग, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एक बार प्रभुपाद जी MIT के अंदर लेक्चर दे रहे थे, वहां पे गए थे, और प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा दैट द नेम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन इज MIT बट वेर इज द एजुकेशन ऑफ ऑलमाइटी भगवान कृष्ण जो है उसके बारे में कहां पे सिखाया जा रहा है बताओ। MIT आपने नाम तो रख दिया है, तो वहां पर एक इंडियन प्रोफेसर था भारतीय, वो वहां पे खड़ा हो गया हाथ उठा के, और प्रभुपाद को बोला वो सब तो ठीक है लेकिन तुमने सिर पे क्या लगा के रखा है, ये तिलक क्यों धारण करते हो, मिट्टी क्यों लगा के रखा है। और प्रभुपाद जी ने उल्टा काउंटर क्वेश्चन किया, उसको बोला आपने ये कंठ लंगोट क्यों पहना है, टाई, ये टाई क्यों पहना है? तो उसको पता नहीं चला कि उसको पता नहीं था कि मैं टाई क्यों पहनता हूँ। कितने लोगों को पता है हम टाई क्यों पहनते हैं? पता ही नहीं है, टाई लगा रहे हैं, फैशन है ये, मतलब जो ऑफिस जाना है तो वो बेचारा टाई को ऐसे उठा के और खड़ा खड़ा देखते रहा, सोचने लगा कि मैं टाई क्यों पहनता हूँ। पहली बार उसको जीवन में किसी ने ये प्रश्न पूछा कि मैं टाई क्यों पहनता हूँ। तो उठा के खड़े खड़े वो सोच रहा था जवाब देने के पहले, एक दो मिनट बाद प्रभुपाद ने बोला बैठ के सोचो, दूसरा प्रश्न पूछो। तो ऐसे प्रभुपाद ने उसको डांट दिया और पूरा लेक्चर खत्म हो गया और वो टाई की तरफ ही देख रहा, सोच रहा मैं टाई क्यों पहन रहा। और प्रभुपाद ने उसको कहा कि जब साधु आवे तो पता चलना चाहिए कौन सा प्रश्न पूछना है और कौन सा प्रश्न नहीं पूछना है ना। प्रश्न पूछना है तो आध्यात्मिक जिज्ञासा के बारे में प्रश्न पूछो, है क्या नहीं? नहीं तो उठपटान कोई भी प्रश्न पूछ रहे उसका कोई मतलब नहीं है। साधु आए तो उससे पूछना चाहिए मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। और कई बार मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया है कि राइट प्लेस पे राइट क्वेश्चन पूछना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एक बार कुंभ मेला में इस्कॉन ने स्टॉल लगाया था पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर ऐसा, तो उसको देख के एक व्यक्ति आया और पहला क्वेश्चन क्या पूछा, क्या पूछा रहेगा पहला क्वेश्चन? आंसर फ्री में मिलता है क्या? तो हाँ फ्री है, फ्री है। तो 5-6 लोगों को लेके आया और फिर प्रश्न पूछने लगा। और वहां पे कुछ कुछ लोग आके ऐसा प्रश्न पूछते थे कि प्रभु जी मैं गंगा में नहा रहा था, मेरा बटुआ खो गया, बताइए बटुआ कहाँ मिलेगा। फिर कोई आके बोला अरे मेरा, मेरी प्रेमिका के साथ बड़ा अनबन चल रहा है, बन नहीं रही है, कैसे समझेगी, या मेरा हाथ देखो, मेरा मुंह देखो, यू नो, मेरे जीवन में भूत क्यों आ गया, इस प्रकार से मेरे वर्तमान में भविष्य में क्या होगा, भूत में क्या होगा, इस प्रकार के सब पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया ये आध्यात्मिक स्टॉल है, यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, मैं कौन हूँ और ये बटुआ खोया है, वो जाके प्रश्न पूछो पुलिस स्टेशन में, पुलिस तुमको बताएगा बटुआ कहाँ मिलेगा, तुम्हारी प्रेमिका कहाँ मिलेगी। और यही प्रश्न उल्टा करके हम लोग पुलिस स्टेशन में जाके पूछेंगे और पुलिस को जाके बोलेंगे दरोगा को कि बताओ मैं कौन हूँ, तो हमको अंदर लेके जाएगा, दो हाथ लगाएगा, बोलेगा मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ, चल, है क्या नहीं? तो पता चलना चाहिए कहाँ पे कौन सा प्रश्न पूछना है, नहीं तो डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर खड़े हैं लाइन लगा के और कोई पूछेगा क्यों आए हो, तो बोलेगा मेरा टायर पंचर हो गया। बोला टायर पंचर हो गया तो क्लिनिक में क्या करना है? बोला नहीं नहीं एक इंजेक्शन मारेगा ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं, साधु के पास जाओ तो क्या प्रश्न पूछना चाहिए वो भी पता होना चाहिए हमको। और साधु में श्रद्धा होनी चाहिए कि साधु आया है वो भी बोनाफाइड, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, एक डिस्क्लेमर लगाते हैं वहां पे। तो डॉक्टर के पास जाएंगे और उठपटान चीजें पूछेंगे हम लोग जो उसकी फील्ड का नहीं है, परेशान हो जाएगा। तो ऐसे क्या होता है कि भगवान ऑल्टर में खड़े हैं और हम लोग जाते हैं और भाजी का लिस्ट लेके जाते हैं उनके सामने और बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें उनसे मांगते रहते हैं कि गाजर दे दो, मूली दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भगवान कहते हैं मध्या जी, पर वो बोलते हैं मध्या जी नहीं, आई वॉन्ट भाजी, मेरे को भाजी दो। और इस प्रकार से मांगते हैं, लेकिन भगवान फ्रस्ट्रेट नहीं होते क्योंकि वो भगवान है और ऑल्टर छोड़ के कभी भागते नहीं, ऑल्टर में खड़े रहते हैं कि ठीक है भैया बच्चा आओ करके। लेकिन कहने का तात्पर्य कि फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है और महाराज प्रताप रुद्र ये फेथ रखते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य पे और उनसे कह रहे हैं कि क्योंकि आप कह रहे हो कि ये भगवान है मैं मानता हूँ। हालांकि उनको डायरेक्टली पता नहीं था कि वो भगवान है क्या नहीं है, जो उनको बाद में पता चलेगा, लेकिन वो कहते हैं कि आप कह रहे हो इसलिए मैं मानता हूँ। तो गुरु में और वैष्णव में श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। तो उसके बाद जब वो महाप्रभु वापिस आए दक्षिण यात्रा से, तो सार्वभौम भट्टाचार्य के पास वापिस से प्रताप रुद्र गए और उन्होंने कहा कि कृपया एक निवेदन करो, मैं एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ, मैं एक बार उनको मिलना चाहता हूँ, प्लीज जरा मेरा इतना मदद कर दो। सार्वभौम भट्टाचार्य बोले क्या बात कर रहे हो राजा, क्यों नहीं, बिल्कुल, आप तो महान भक्त हो, जगन्नाथ के बड़े भक्त हो, मैं आपको मिलवाऊंगा। और वो जाके और सार्वभौम भट्टाचार्य उनको मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके पहले प्रताप रुद्र महाराज की जिज्ञासा देखो, ईगरनेस देखो, दैट ही इज वॉन्ट टू मीट श्री चैतन्य महाप्रभु, कह रहे मेरे को महाप्रभु को मिलना है। तो ये दीर्घ काल तक साधना भक्ति में स्थिर और अडिग रहने के लिए बहुत जरूरी है ईगरनेस, कि ये ईगरनेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है कि स्टार्ट में जब हम भक्ति में आते हैं तो वो ईगरनेस होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे थोड़ा ईगरनेस हमारा कम होता है। और भगवान को जानने के लिए, भगवान को पाने के लिए और उनके पास जाने के लिए संबंध ज्ञान हमारा बहुत गाढ़ा होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह हमको समझ में आना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है। नहीं तो भगवान आते हैं भक्ति में पूरा जोश शोर के बाद और उसके बाद धीरे 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 हमारा उत्साह क्षीण होते रहता है, और उसके बाद फिर हमारे को बहुत डिफिकल्टी होती है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और बहुत सारी शंकाएं घर कर लेती है, बहुत डाउट्स आ जाते हैं। तो डाउट्स आर लाइक डीमन, वी हैव टू किल देम अदरवाइज दे विल किल अस। और कभी कभी जैसे गौरांग प्रभु एग्जाम्पल देते थे हमेशा कि जब भक्ति में व्यक्ति नया नया पहली बार आता है तो हर एक पॉइंट पे झटका लगता है, कि कथा सुनता है तो लगता है ओ हो क्या मस्त बात बताई है, इतना अच्छा बात बताया है कि वाह रोमांच खड़ा हो गया, बहुत मस्त, क्या कथा में आनंद आ रहा है। और कीर्तन करता है तो कीर्तन में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है जंप मारूंगा सीलिंग फैन तक पहुंच जाऊंगा और सीलिंग फैन को पकड़ के लटकूंगा और हरे कृष्णा करूंगा इतना। लेकिन बाद में कुछ साल बीत जाते हैं, हाथ में माला रहती है और नीचे से ऊपर सीलिंग फैन को देखते रहते हैं कि हरे कृष्णा यार क्या हो गया ना, तो वो उत्साह कम हो जाता है। लेकिन उत्साह हमको बढ़ाए रखना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और महाराज प्रताप रुद्र का उत्साह बहुत है कि कई बार महाराज प्रताप रुद्र को ना बोला चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन वो बढ़ते गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य गए चैतन्य महाप्रभु के पास, और चैतन्य महाप्रभु के पास जाके और वो बोले कि राजा आपसे मिलना चाहता है, कृपया आप राजा से मिलिए। और उसी राजा ने महाप्रभु के रहने के लिए अच्छा व्यवस्था किया था। तो जब पहली बार जब महाप्रभु के लिए उन्होंने पूछे थे तो उन्होंने बोला कि महाप्रभु के लिए अगर कोई सेवा व्यवहार तो मेरे को बताना, जैसे हम लोग मांगते रहते ना कोई प्रभु जी कोई सेवा हो तो जरा देना मेरे को, सर्विस हो तो सेवा के बारे में पूछते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि महाप्रभु को रहने के लिए बहुत अच्छा जगह चाहिए, तो आप कृपया राजा है तो आप उसका इंतजाम कर दीजिए। तो वो काशी मिश्रा को बुलाते और कहते हैं काशी मिश्रा तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, जो जगन्नाथपुरी के पास में भी है लेकिन थोड़ा एकांत में भी है, और वहां से टनल निकलते हैं जिसमें से सीधा सीधा जगन्नाथपुरी के मंदिर में जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कृपया आप महाप्रभु को अपने घर पे रखो। और काशी मिश्रा बड़े प्रसन्न होते हैं, काशी मिश्रा कहे आमी महाभाग्यवान मोर घरे प्रभु पादेर हबे अवस्थान। तो बोले कि मैं बड़ा महाभाग्यवान हूँ कि प्रभु पादेर, ये प्रभुपाद जो है, महाप्रभु जो है, चैतन्य महाप्रभु के चरण मेरे घर पे पड़ेंगे, इतना बड़ा मेरा सौभाग्य होगा। तो इस प्रकार से वो उन्होंने उनका इंतजाम करा दिया। और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास जाके सार्वभौम भट्टाचार्य ने बड़े ही नम्र निवेदन से जाके एक रिक्वेस्ट रखी, ए प्ली, और वो कहने लगे सार्वभौम कहे ए प्रताप रुद्र राय उत्कंठ आई चेतो मां मिली बारी चाय। वो बोले कि एक ये राजा महान प्रताप रुद्र राजा है जो जगन्नाथ के इतने बड़े भक्त है महाप्रभु, वो आप इतनी उत्कंठा है उनकी, एक बार वो आपसे मिलना चाहते हैं। कर्ण हस्त दिया प्रभु स्मरे नारायण सार्वभौम कहे के नो अयोग्य वचन। तो जैसे ही जैसे हमारे पास आज भी हम लोग भी बहुत बड़े बड़े लोगों को अपने प्रोग्राम में लाने के लिए क्या क्या गुल नहीं खिलाते हैं, है ना, बहुत कोशिश करते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और ऐसे बड़े बड़े लोग जो यहाँ के बड़े बड़े बिजनेसमैन है या होटल के मालिक है या जो है, उनको हम लोग प्रोग्राम में लेके आए और उनको स्पेशल आसन दे के, अच्छा गार्लैंड दे के उनकी बड़ी स्तुति हम लोग करते हैं और उनको लाने की कोशिश करते हैं। तो राजा आ रहा है, यू नो, जैसे अगर समझो हमारे प्रोग्राम में, पता नहीं ऐसा कभी होगा नहीं होगा, भगवान से प्रार्थना करते ऐसा हो और जल्दी हो कि भाई जैसे शेख खलीफा या शेख मोहम्मद हमारे प्रोग्राम में आवे, है कि नहीं, कितना आनंद आएगा, आएगा कि नहीं। तो ऐसा राजा देश का जो है जिसके बारे में सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास जाके कह रहे हैं कि हे प्रभु राजा महाराजा महाराजा दि धीराज प्रताप रुद्र महाराज पुरुषोत्तम देव के वंशज आपसे मिलना चाहते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु का इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है, कान बंद कर लेते हैं, नारायण नारायण श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलते हैं कि ये क्या कह दिया, विरक्त सन्यासी अमर राजा दर्शन स्त्री दर्शन सम विशेरा भक्षण। और कहने लगे कह रहे अयोग्य वचन क्यों कह रहे हो सार्वभौम भट्टाचार्य, ये क्या गलत बात कह रहे हो आज तुमको, और मुझको कहते हैं कि मुझे राजा से मिलना चाहिए, तुम जानते हो सन्यासी का राजा से मिलना वर्जित है, मैं राजा के साथ नहीं मिल सकता। और एक सन्यासी राजा का दर्शन करे, एक स्त्री का दर्शन करे, उसके लिए इस प्रकार है जिस प्रकार से वो विष खा लेता है, जानिया सुनिया विष खाइनू, कि अगर जानबूझ के विष खा लेता है कोई, वो राजा का दर्शन और स्त्री का दर्शन करने के समान एक सन्यासी के लिए है। तो मैं क्योंकि सन्यासी हूं मैं राजा से नहीं मिलना चाहता, आप ऐसी बात मेरे साथ मत करो। और ऐसा कह के बहुत जोर से डांट दिया सार्वभौम भट्टाचार्य को, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य वापस प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि महाराज प्रताप रुद्र ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, भगवान के बहुत बड़े भक्त है, जगन्नाथ के महान भक्त है। और वो कहने लगे, सार्वभौम कहे सत्य तुम्हारा वचन, कहते हैं कि हे भगवान आप सत्य कह रहे हो, आप जो कह रहे हो वो 100% राइट है। सार्वभौम कहे सत्य तुम्हारा वचन, जगन्नाथ सेवक राजा किंतु भक्त उत्तम। वो कहते हैं कि ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, ये भक्त उत्तम है, ये उत्तम भक्त है, श्री जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त है, राजा है, फिर भी भगवान के लिए कितना वो कुछ करता है और कितने भक्तों की सहायता करता है, हमारा प्रोग्राम करने के लिए हमको इतना बड़ा डोनेशन देता है, ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, प्लीज आप उसको थोड़ा प्लीज कंसिडर करो। प्रभु कहे तथापि राजा काल सर्प कर, देखो कितना कठिन कठिन वाक्य जो है वो श्री चैतन्य महाप्रभु यूज कर रहे हैं। और इसी मध्य लीला के अंदर आगे हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक बहुत अच्छा श्लोक कहा, मैं आपको सुनाता हूँ श्लोक। उसके अंदर वो क्या कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा, देखो उसकी कृपा का वर्णन करते हुए कहते हैं, आप अपने करिया स्वादने सिखाई ला भक्त गणे प्रेम चिंता मणिर प्रभु दानी, नहीं जाने स्थान स्थान यार तार कैला दान महाप्रभु दाता शिरोमणि। वो कहते हैं कि महाप्रभु ऐसे दाता है, ऐसे शिरोमणि है कि वो लोग स्थान नहीं देखते, प्लेस नहीं देखते, पात्र नहीं देखते, कौन है सामने किस नहीं, जिसको आए उसको अपनी भक्ति बांट रहे हैं, उसको अपना प्रेम दे रहे हैं और हर किसी को अपना प्रेम देते हैं। दक्षिण भारत में गए थे, जिस किसी व्यक्ति को वो एम्ब्रेस करते थे वो रोने लगता था, चिल्लाने लगता था, रोमांच खड़े होते थे, उसके अश्रुधारु प्रवाह होती थी। और इस प्रकार से कृष्णा कृष्णा चिल्लाते चिल्लाते हरे कृष्ण महामंत्र का वो जप करता था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार के दाता शिरोमणि श्री चैतन्य महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र को अपनी मर्सी देने के लिए देखो क्या क्या कर रहे हैं और कितने कठोर कठोर वाक्य उनके लिए यूज कर रहे हैं। वो कहते हैं, प्रभु करे तथापि राजा काल सर्प कर काष्ठ नारी स्पर्शे याचे उपजे विकार। वो बोले कुछ भी हो लेकिन राजा जो है वो कैसा है, काल सर्प कर, वो सांप के समान है, और ऑर्डिनरी सांप नहीं, वेनमस सर्पेंट कोबरा, वो कोबरा के समान है। बोले नहीं, राजा जो है वो कोबरा के समान होता है, ये जो पैसे वाले जो लोग होते हैं ये लोग भक्ति के अंदर नहीं आ सकते, ये कोबरा के समान है। और काष्ठ की स्त्री उसको भी अगर स्पर्श करेगा कोई तो एजिटेट हो जाएगा, तो सच में स्त्री का स्पर्श करने का तो क्या कहना। तो कह के राजा का दर्शन मैं करूं वो एकदम काल सर्प के समान है, वो एकदम पूरा उसका संग मैं नहीं लेना चाहता, कोबरा है, हटा उसको कोबरे को, उस कोबरे को मैं नहीं देखना चाहता, निकालो यहां से। तो सोचो ऐसा अगर कोई हमारे को कहेगा कितना कितना तकलीफ होगा, है ना। प्रभुपाद जी बताते हैं दैट मटेरियलिस्टिक पीपल आर लाइक कोबरा, तो वो लोग दे आर लाइक स्नेक एंड वी कैन। और हम लोग जैसे अभी कभी प्रचार के लिए जाते हैं तो ऐसा कभी हमारे को सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा है कि हम लोग रिस्क लेके प्रचार करते हैं, है कि नहीं। नहीं तो अगर कोई जाके मटेरियलिस्टिक कर्मी आदमी को आप ऐसा नहीं बोल सकते, ए कोबरा ए सर्प इधर चल बैठ चैंटिंग कर, चार नियम का पालन कर, नहीं ऐसा प्रचार नहीं कर सकते, हमको बहुत टेक्निक से करना पड़ता है। लेकिन प्रभुपाद जी और कहते हैं कि माइंड इज लाइक ए कोबरा, यू कैनॉट डील विद कोबरा कैजुअली, कि जैसे एक समझो ऐसे इस दुनिया के अंदर विचित्र विचित्र प्राणी है, ऐसे लोग हैं जो कोबरा भी पालते हैं। मैंने देखा था एक न्यूज़ में पढ़ रहा था कि एक कोई लेडी थी जिसने 2 साल तक कोबरा पाला था, 2 साल तक वो कोबरे के साथ ही सोती थी, उसको गले में लटकाती थी, उसको एम्ब्रेस करती थी, और ये सब ये न्यूज़ में है। तो लेकिन 2 साल के बाद उसी कोबरा ने उसको मार दिया, यू नो उसका चौकअप हो गया गला और वो मर गई। तो कोबरा को हमने अगर पाल के भी रखा है लेकिन उसके साथ कैजुअली डील नहीं कर सकते जब तक कि उसका विष नहीं निकला है। तो हालांकि हम लोग अपना जप करेंगे और कोबरा बाजू में बैठा है तो एक नज़र कोबरे पे भी रहेगी कि कहीं आक्रमण तो नहीं कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए माइंड जो है इज लाइक ए कोबरा। तो इसके लिए हमको जब भक्ति के अंदर आते हैं तो हमारे मन को पहले वश में करना पड़ता है, और माया जो है वो इतनी चालू है कि जब तक हम लोग माया की गोद में बैठे रहते हैं तब तक वो फुफकार नहीं मारती है, तब तक कुछ नहीं है, अपना सिर के ऊपर हाथ फिराते रहती है कि चलो बेटा ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग भक्ति करने की कोशिश करते हैं वो अलर्ट हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जेल के अंदर जब तक कैदी लोग जेल का सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं जेलर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो लोग बंदूक लेके घूम रहे लेकिन कुछ नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप वहां से जेल से निकलने की कोशिश करोगे क्या होता है, इमीडिएटली सब लोग एक्टिवेट हो जाते हैं, सायरन बजने लगता है, बंदूकें चाली धन 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 गोलीबारी सब चालू हो जाती है। वैसे ही इस मटेरियल वर्ल्ड में जब तक हम लोग आराम से गोते खा रहे हैं तब तक सब कुछ मजा है, कुछ माया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में से जब निकलने का प्रयास करते हैं और जब भगवान में के धाम में जाने के लिए हम लोग अग्रसर होने की कोशिश करते हैं, इमीडिएटली सायरन वायरन सब चालू हो जाता है, फायरिंग चालू हो जाती है। तो इसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए भक्ति के अंदर हमारे को कभी भी यू नो लैक्स नहीं होना चाहिए, भक्ति के अंदर हमेशा सतर्क रहना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि ये माया जो है ये कोबरा के समान, ये माइंड हमारा जो है कोबरा के समान है। तो आगे कहते हैं, ऐसे बात पुनर ऐसी बात पुनरपि मुखे न आनी बे, कहा यदि तबे आमाए एथा न देखी बे। वो कहते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य, नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मुझसे ऐसी बात कही कि तुम राजा का दर्शन करो, राजा से मिलो या राजा को अपना मीटिंग के लिए एक चांस दो, तो तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे। ऐसा कई बार होता है ना पिक्चर के अंदर भी, हम लोग डायलॉग देखते हैं, तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे, ऐसा किया तो ये किया। वो कहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को कि तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे, ऐसी बात अपने मुख पे लाना भी नहीं नेक्स्ट टाइम से। और जब ऐसा कहा तो सार्वभौम भट्टाचार्य की स्थिति क्या हुई, क्या हुआ सार्वभौम भट्टाचार्य, डर गए, एकदम डर गए कि इतना जोर से चिल्ला के महाप्रभु कभी बात नहीं करते हैं। यू नो जैसे अभी कई बार ऐसा है कि यू नो जैसे हमारे गुरु महाराज है या कुछ है, हमेशा मर्सी बांटते रहते हैं, जब देखो तब हर किसी को मर्सी देते हैं, और हमारा एक वो ऐसा बन जाता है कि अरे महाराज तो बहुत मर्सीफुल है, बहुत ऐसा है करके, और वही महाराज कभी एक बार तुमको जोरदार डांट ले तो कैसी हालत खराब हो जाएगी, पूरी धरती खिसक जाएगी नीचे से। तो ऐसा महाप्रभु ने डांटा कि सार्वभौम भट्टाचार्य बिल्कुल डर गए। और भय पाने सार्वभौम निज घर गेला, विषय गिया भट्टा वसय गिया भट्टाचार्य चिंतित हैला। और वो तुरंत घर चले गए डर के मारे और सोचने लगे कि यार महाराज प्रताप रुद्र को कृपा कैसे प्राप्त होगी। देखो एक भक्त जो होता है दूसरे भक्त के बारे में हमेशा अच्छा सोचता है कि भाई ऐसा नहीं है। और श्री चैतन्य महाप्रभु के अंदर ये डेमोन्स्ट्रेशन बार बार हुआ है कि अगर एक भक्त को कृपा मिलती है तो दूसरे भक्त को उससे द्वेष नहीं होता है, वो कभी ऐसा नहीं सोचता इसी को क्यों मिल रही है, मेरे को क्यों नहीं मिल रही है, मुझे भी मिलनी चाहिए ऐसा। तो ये जो है वो सोचने लगा कि महाप्रभु को महाराज प्रताप रुद्र को महाप्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होगी। और वो जाते हैं, फिर चैतन्य चरितामृत में एक दूसरा एपिसोड आता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी का ध्यान इधर है, हरि बोल, कैन यू हियर मी एवरीवन, क्योंकि बहुत इधर उधर हो रहा है। तो अगर किसी को अगर सेवा नहीं है तो आप कृपया थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। तो दूसरा एक एपिसोड कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं और इससे महाराज प्रताप रुद्र की जो दिव्य गुण है वो उभर के बाहर आता है कि कैसे महाराज प्रताप रुद्र है और कैसा उनका भाव है। तो बताते हैं कि रामानंद राय महाराज प्रताप रुद्र के गवर्नर थे, महाराज प्रताप रुद्र राजा थे और रामानंद राय मद्रास के गवर्नर थे, और उनको महाप्रभु ने बहुत कृपा दिया। रामानंद राय को बहुत विशेष महाप्रभु की कृपा मिली। और जैसे चैतन्य महाप्रभु के आप अगर पार्षदों को देखो तो एक से एक बड़े पॉलिटिशियन है कि नहीं, हर कोई, महाराज प्रताप रुद्र राजा, रामानंद राय गवर्नर, सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर, रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर, रघुनाथ दास गोस्वामी सीईओ, इतना सब मतलब बड़े बड़े पॉलिटिक के लोग भरे हुए हैं श्री महाप्रभु के आजू बाजू के अंदर। लेकिन भक्ति में आने के बाद किसी के साथ एक दूसरे से पॉलिटिक्स नहीं खेलते थे वो लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से आदान प्रदान करते थे और एक दूसरे का भक्ति में कैसे आगे बढ़े ये सीख हमको श्री चैतन्य महाप्रभु के इन पार्षदों से मिलती है। तो रामानंद राय वो महाप्रभु से मिलने के लिए आए और रामानंद राय को बैठ के 7 दिन तक पूरा का पूरा उन्होंने कथा सुनाया था और उनसे कथा सुना भी था। और रामानंद राय सुनाते थे भक्ति के बारे में और महाप्रभु कहते थे और सुनाओ और आगे कहो यार और सुनाओ बस सुनाते जाओ। और इतना प्रेम दिया और इतना आलिंगन किया, ऐसा वर्णन आता है श्री चैतन्य चरितामृत में कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु नदी के पास जब जा रहे थे और वहां से जब रामानंद राय अपने एंटूराज के साथ पूरा आए, मद्रास के गवर्नर थे, जब दोनों जन आए तो एक दूसरे को जब उन्होंने देखा तो रोमांच खड़ा हो गया और ऐसा हुआ कि तुरंत वो गिर के और जाके और सीधा का सीधा उन्होंने रामानंद राय को आलिंगन कर लिया। लेकिन जैसे उन्होंने आलिंगन किया, महाप्रभु को घंटी बजी और उन्होंने सोचा कि नहीं, मेरे को रामानंद राय को पब्लिक के अंदर ऐसा आलिंगन नहीं करना चाहिए, और उन्होंने पीछे हटे थोड़े से। इसलिए कविराज गोस्वामी तुरंत वहां पे कहते हैं, विजातीय लोक देखी प्रभु कैले संवर्ण। तो कहते हैं कि विजातीय लोक देखी, तो विजातीय लोक कौन थे? स्मार्त ब्राह्मण। जब चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के पास गए और उनको आलिंगन किया तो उनको वो सजातीय मान रहे हैं, अपना अपना आदमी मान रहे हैं कि वो सजातीय है, मेरी जाति का आदमी है। नो, भक्त भक्त अपने आप को सजातीय मानते हैं, तो वह उसको सजातीय मान रहे थे। लेकिन स्मार्त ब्राह्मण जो वहां के मद्रास के जो ब्राह्मण लोग थे, वो लोग जब आए वहां पे और उन्होंने देखा चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत पीछे हट गए और उन्होंने बोला कि नहीं, विजातीय लोक देखी प्रभु कैले संवर्ण, बोले कि नहीं ये विजातीय लोक है। हालांकि चैतन्य महाप्रभु कौन थे? मिश्रा ब्राह्मण, वो ब्राह्मण थे और मद्रास के ब्राह्मण भी ब्राह्मण थे। और ये कौन थे? रामानंद राय शूद्र जाति के थे, एक्चुअली वो शूद्र थे जाति से, लेकिन वो शूद्र को अपना भाई मान रहे हैं, अपना सजातीय मान रहे हैं और ब्राह्मणों को विजातीय मान रहे हैं। तो रामानंद राय को बहुत कृपा दी चैतन्य महाप्रभु ने। रामानंद राय आईला गजपति संगे, प्रथम ही प्रभु आसी मिलीला बहुरंगे। ऐसा बताते हैं कि महाराज प्रताप रुद्र जब जगन्नाथपुरी में आए तो रामानंद राय उनके साथ साथ में आए, क्योंकि उनके बॉस थे और बॉस के साथ उनको यस बॉस करके चलना था। तो महाराज प्रताप रुद्र के साथ चलने लगे। राजा प्रणय कैला प्रभु कैला लिंगन, दुई जन प्रेम वैसे करे ना कंदन। तो जब वो गए रामानंद राय, तो महाप्रभु की इमीडिएट रिएक्शन प्रतिक्रिया क्या थी? महाप्रभु ने क्या किया? आलिंगन किया, सीधा का सीधा उनको अपने बाहों में भर लिया और जोर से उनको आलिंगन किया। दुई जन प्रेम वैसे करे ना क्रंदन। अपॉन मीटिंग श्री चैतन्य महाप्रभु, रामानंद राय ऑफर्ड हिज ओबेसेंसेस, द लॉर्ड एम्ब्रेस्ड हिम एंड बोथ ऑफ देम बिगन टू क्राई इन ग्रेट एक्सटेसी ऑफ लव। राय कहे तुम्हार आज्ञा राजा के कहिला, तुम्हारा इच्छा है राजा मोर विषय छाड़ेला। और आके रामानंद राय रिपोर्ट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, और चैतन्य महाप्रभु को क्या कह रहे हैं कि हे महाप्रभु, मैंने आपकी इच्छा जाकर महाराज प्रताप रुद्र को कही। और क्या इच्छा थी चैतन्य महाप्रभु की? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यार रामानंद राय, तुम सुबह 8 से लेकर 6 बजे तक इतना काम करते हो, ड्यूटी करते हो, मैं तुम्हारा संग जो है विच्छेद सहन नहीं कर सकता। आई वॉन्ट योर कॉन्स्टेंट एसोसिएशन, सो कैन यू प्लीज गो एंड रिजाइन। जाके वहां पे अपना चिट्ठी डाल दो और रिजिग्नेशन लेटर डाल के और आ जाओ मेरे पास में। तो यही बात वापिस आके बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को, और कहते हैं कि हे महाप्रभु, मैं गया था राजा के पास, राजा के पास जाके मैंने अपनी इच्छा की कि अभी मैं नहीं ज्यादा काम कर सकता, बहुत हो गया, कृपया मेरे को छोड़ दो। तो पता है राजा ने क्या कहा? तो कितना मस्त ये एकदम भाव है यहाँ पे, देखो इसको। तो बोलते हैं कि तुम्हारा नाम सुनी राजा आनंदित होइला, आसन है ते उठी मोर आलिंगन कैला। तो बोले कि जब मैं गया और महाराज प्रताप रुद्र को जाके मैंने ये कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु के आदेश पे उनका संदेश लेके आया हूँ और मैं आपको अपना रेजिग्नेशन देना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरा सेकंड वाक्य सुना ही नहीं, केवल आपका नाम सुनने पे इतना खुश हो गए कि तुरंत खड़े हो गए अपने आसन पे से, अपने सिंहासन पे से खड़े हो गए और तुरंत नीचे उतरे और केवल आपका नाम सुनने मात्र से मुझे आलिंगन कर लिया। तुम्हारा नाम सुनी हैला महाप्रेमावेश, मोर हाथे धरी करे प्रीति विशेष। बोले जैसे ही तुम्हारा नाम सुना प्रेमावेश में राजा आ गए, महाराज प्रताप रुद्र केवल आपका नाम सुनने से एकदम भोर विभोर हो गए। हम लोग कितना बार नाम सुन रहे हैं? गौरांगा, कितने लोगों को भाव विभोर हो गया? भाई हाथ खड़ा करो। मेरे को तो नहीं हुआ है क्या? नहीं, कितना सिर्फ गौरांगे, गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर हरी हरी बोलीते नयने हवे नीर। कि केवल गौरांग का नाम सुन के किसको मतलब इतना आवेश हो जाएगा। वैसा महाराज प्रताप रुद्र को हो रहा था। तो इससे भी हम लोग समझ सकते हैं कि महाराज प्रताप रुद्र ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, बहुत विशेष भगवान के भक्त है। और वो कहते हैं कि मोर हाथ धरी कैला प्रीति विशेष, और मेरा हाथ पकड़ लिया उन्होंने और कहा कि क्या बात है, तुम रिजाइन करना चाहते हो? अरे रिजाइन क्यों कर रहे हो? जैसे समझो आजकल तो जो गल्फ में जो सिचुएशन हो रही है वो तो सभी को मालूम है कि क्या हो रहा है, और हर किसी को ऑफिस में जाते हुए डर लगता है, है कि नहीं? हर एक व्यक्ति आज ऐसा है कि जब उसके कदम ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कोई हॉरर मूवी देखने के लिए जा रहा है, और एकदम डर लगता है। और अपना जो कार्ड है एक्सेस कार्ड, वो जेब में से निकाल के और उसको तुरंत लगाता है और चल गया तो आज तो मेरा कार्ड चल गया, चलो अंदर घुसते हैं ऐसा करके। नहीं तो कई बार ऐसा है कि लोगों का कार्ड ही नहीं चलता है और वहाँ पर नोटिस लगा रहता है, जैसा हुआ ना कैंपो के अंदर, कि नोटिस लगा था कि भैया जिसका कार्ड नहीं चल रहा है कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाओ, और वहाँ पे आपको पिंक स्लिप दे दिया और बोला घर जाओ, चलो बहुत हो गया तुम्हारा। तो ऐसा डर है यहाँ पर, लेकिन सोचो कि आप खुद बिना डरे बॉस के पास जाते और हाथ में रेजिग्नेशन लेटर और लेटर पटकते उसके सामने, बोलते बॉस अभी मैं काम नहीं करना चाहता, और बॉस आपका खुश हो जावे, आपको आलिंगन करे, आपका हाथ चूमे और आपको बोले अरे क्या बात है, अरे तुम रिजाइन करना चाहते हो, रिजाइन करने की क्या जरूरत है, मैं तुमको वॉलंटरी रिटायरमेंट देता हूँ, और ऐसा वॉलंटरी रिटायरमेंट देता हूँ कि साथ में पगार भी देता हूँ, जो तुम्हारा करंट पगार है जीवन पर्यंत वो तुमको पगार दूंगा, ग्रेच्युटी भी दूंगा, प्रोविडेंट फंड भी दूंगा, सब दूंगा, तुम जाओ और केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस खाली चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। कैसा लगेगा हम लोगों को सोचो, कोई बॉस अगर आके ऐसा बोलेगा कि तुमको वेतन भी देता हूँ मैं, वेतन भी लेके जाओ और बस जाके केवल कथा सुनो और हरि नाम का प्रचार करो, हरे कृष्ण महामंत्र लो और चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो। अरे वही चैतन्य महाप्रभु जो मेरे को अपने मिलने नहीं दे रहे हैं, वैसा चैतन्य महाप्रभु को ठीक है आप जाओ करके। लेकिन यहाँ पर प्रताप रुद्र राजा क्या कहते हैं, तुम्हारे ये वर्तन तुम्ही खाओ से वर्तन, निश्चिंत होए भजो चैतन्य चरण। वो कहते हैं कि as soon as he heard my petition, he immediately granted me a pension without deductions. Thus the king granted me a full salary as a pension and requested me to engage without anxiety in the service of your lotus feet. तो कहते हैं कि तुम्हारे ये वर्तन तुम्ही खाओ से वर्तन, निश्चिंत होए भजो तुम्ही चैतन्य चरण। तो बोले मैं तुमको वेतन देता हूँ, ये वेतन तुम लेके जाओ, जीवन पर्यंत तुमको पगार मिलते रहेगी, अकाउंट क्रेडिट होता रहेगा और तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। रामानंद राय तुम जाओ और तुम चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो। सोचो कैसा भाव है उनका, और चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय उनके कौन है, उनके सबॉर्डिनेट है। तो कई बार बॉस सबॉर्डिनेट को ज़्यादा मर्सी मिल रहा है, बॉस को कम मिल रहा है। तो ऐसा सोचो कि जैसे तुमने किसी को प्रेज किया है और वो व्यक्ति आगे बढ़ गया बहुत, और बहुत आगे बढ़ा, और तुम कोशिश कर रहा है, तुम्हारा सेटिंग नहीं बैठ रहा है और उसको इतना मर्सी पे मर्सी मिल रहा है। तो दूसरे भक्तों को इस प्रकार से मर्सी मिलता हुआ, और वो भी जो हमारे से जनरली जूनियर है, मिलके प्रसन्नता होनी चाहिए, यही चैतन्य चरितामृत यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है। तो राजा प्रताप रुद्र ने ऐसा नहीं सोचा कि यार इसको बहुत कृपा मिल रही है, हाँ इसका ट्रांसफर करा देता हूँ मैं, मद्रास से आसाम भेज देता हूँ, उधर मरने दो इसको, आसाम के अंदर कोई मिलेगा नहीं, कोई प्रचार नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे, ऐसा जंगल में भेजूंगा या उसको अंडमान निकोबार में ट्रांसफर करता हूँ, एक ब्रांच है मेरा उधर, वो ब्रांच का मैनेजर बना देता हूँ, संभालेगा वो ब्रांच। ऐसा कभी सोचा नहीं, सोचा यार ठीक है तुमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल रही है, तुम ले चलो आगे बढ़ो, नो प्रॉब्लम। तो दिस इज क्वालिटी ऑफ नॉन एनवियसनेस। और रामानंद राय वो जाते हैं, प्रभु इफ यू कैन परमिट मी इट्स ओके आई कैन कंप्लीट, अदरवाइज दिस इज 50% लेक्चर, बिकॉज ये जो है ये अभी महाराज प्रताप रुद्र की उत्कंठा के बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर महाराज प्रताप रुद्र को कृपा मिलनी भी बाकी है, तो बहुत सारी 5-6-7 इंस्टॉलमेंट में कृपा मिलती है उनको, तो वो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा। सो आई डोंट नो इफ इट इज़ पॉसिबल 15 मिनट, आई विल ट्राई टू कवर वॉट एवर आई कैन, आई डोंट नो मेबी अदरवाइज नेक्स्ट टाइम। हाँ ओके, बट मीटिंग इज आफ्टर द प्रोग्राम और बिफोर द प्रोग्राम? महाराज प्रताप रुद्र इज ईगर टू मीट श्री चैतन्य महाप्रभु एंड मर्सी बाय श्री चैतन्य महाप्रभु वी विल डिस्कस। सम अदर टाइम कृष्णा विल नॉट। सो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, रामानंद राय के प्रति महाराज प्रताप रुद्र बहुत कृपालु है, और बहुत कृपालु होकर वो कहते हैं कि यार मुझे नहीं मिल रहा है कृपा, तुझे मिल रहा है, तू जा आगे बढ़, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। ऐसा भाव नहीं रख रहे हैं कि यार मैं तो सीनियर हूँ, मेरा इनिशिएशन पहले हुआ है, मैं भक्ति में पहले आया, मैं इतना ज्ञानी हूँ, ये है वो है, ऐसा करके इसको क्यों मिल रहा है, मेरे को भी मिलना चाहिए, यू नो। और कई बार ऐसा करने से जो भक्त के समाज के अंदर बहुत रिफ्ट पैदा हो जाता है और बहुत क्लेश हो जाता है, और ये जो कोऑपरेशन का जो धागा है वो कई बार टूट जाता है। और वो कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। तो ऐसा है कि जब एक बार वो धागा टूट जाता है तो वो जुड़ता नहीं है, और अगर जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि वो धागा टूटे ना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो प्राप्त हो रही है रामानंद राय को, तो रामानंद राय को वो, और ऐसा भी नहीं था कि रामानंद राय, जैसे अगर समझो महाराज प्रताप रुद्र को अगर सोचना है तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि यार रामानंद राय कौन सा बड़ा आदमी है यार, यू नो, मैं भी पॉलिटिशियन, वो भी पॉलिटिशियन, मैं एक लेवल ऊपर हूँ, लेकिन वो भी तो पॉलिटिक्स ही कर रहा है, वो भी गवर्नर है। ऐसा थोड़ी है कि वो खाली 24 घंटा बैठ के हरे कृष्णा का जप कर रहा है माला के ऊपर, नहीं, वो भी पॉलिटिक्स कर रहा है, वो भी टैक्स वसूलता है क्या नहीं। मैं अपना राज्य संभालता हूँ तो वो भी टैक्स, और टैक्स आसानी से वसूला नहीं जाता, हमको ये बात मालूम है कि टैक्स वसूलने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तब जाके लोग टैक्स देते हैं। तो वो टैक्स वसूलते थे, गवर्नर थे और बहुत सारा काम करते थे। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई ये कौन सा यू नो बहुत बड़ा तीस मार खां है, यू नो ये भी मेरे जैसे ही तो है, कौन सा बड़ा भक्त है। तो इस प्रकार से वो नहीं सोचते थे, वो सोचे कि नहीं यार चलो जाओ तुम आगे बढ़ो। तो इस प्रकार से एक दूसरे से डील करते थे। और उसके बाद इतना होने के बाद भी जब उन्होंने उनको वो पेंशन दे दिया, महाराज प्रताप रुद्र में एक और क्वालिटी है जो उभर के बाहर आती है, और वो है ह्यूमिलिटी। वो बहुत हम्बल है महाराज प्रताप रुद्र, और वो कहते आमी छार योग्य नाही तार दर्शने, तार ये भजे तार सफल जीवने। वो बोले कि हे रामानंद राय, मैं तो बहुत ही अभागा हूँ, मुझे तो महाप्रभु के दर्शन भी नहीं मिल रहे, मैं क्या करूँ, मैं बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन मेरे को महाप्रभु का दर्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन तुम कितना भाग्यवान है यार, जाओ तुम्हारा जीवन सफल करो, जाओ। ऐसा करके वो कहने लगे, और बहुत धैर्य रख के और बहुत ही ह्यूमिलिटी के अंदर, और वो कहने लगे, और उनमें कितना धैर्य है देखो, और धैर्य से वो कहते हैं परम कृपालु तेनो व्रजेंद्र नंदन, कौन जन्म मोर अवश्य दिबे न दर्शन। अब ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा श्लोक है। वो कहते हैं परम कृपालु तेहो व्रजेंद्र नंदन, कौन जन्म मोर अवश्य दिबे न दर्शन। ये जो मुकुंद के साथ हुआ था, जब महाप्रभु प्रकाश लीला में महाप्रभु अपनी कृपा बांट रहे थे, और वो कृपा बांटते बांटते सबको कृपा दिए लेकिन मुकुंद को नहीं दिए, तो किसी ने कहा कि महाप्रभु मुकुंद को भी तो कृपा दे दो, तो उसने कहा कि मुकुंद को मैं कृपा नहीं दूंगा। लेकिन फिर किसी ने बहुत कहा तो कहा कि उसको कभी मिलेगा क्या दर्शन, तो बोला हाँ मिलेगा 10,00,000 करोड़ जन्म के बाद। और मुकुंद नाचने लगा, बोला अरे कभी ना कभी तो मैं महाप्रभु का दर्शन करूंगा, है क्या नहीं। तो हमको ऐसा एक श्रद्धा और ऐसा विश्वास और ऐसा धैर्य रखना चाहिए कि अवश्य मेरे को भगवान का कभी न कभी संग प्राप्त होगा, दर्शन प्राप्त होगा, उनकी कृपा प्राप्त होगी। अगर आज नहीं मिल रही है तो कल मिलेगी मेरे को, ये धैर्य हमको रखना चाहिए। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम लोग धाम यात्रा पे जाते हैं और एकदम दौड़ के सब लोगों को पीछे करके धक्का मार के और एकदम आगे जाके और वहां पर भगवान का दर्शन करते हैं। तो राधानाथ महाराज कई बार हमारे को ये पॉइंट बताए हैं कि आप ऐसा भाग के और दूसरों को धक्का मार के आगे जाओगे, विल लॉर्ड बी हैप्पी टू सी यू, कि भगवान के आपको देख के प्रसन्न होंगे कि धक्का धुक्की मार के सबको पीछे पछाड़ के और यहाँ पे मेरे दर्शन के लिए आ गया। अरे भगवान उसको देखते हैं जो पीछे बैठा रहता है। ऐसा एक वर्णन आता है कि जब भी राम कथा होती है हनुमान जी वहां पर आते हैं, और आपको मालूम है हनुमान जी कहाँ बैठते हैं, एकदम पीछे। और ये सत्य है, जब तुलसीदास जी राम कथा करते थे तो एकदम पीछे बैठते थे, और उनको सपना आया कि हनुमान जी कथा में आते हैं, तो बोले मैं पहचानूंगा कैसे, तो बोले एक व्यक्ति जो एकदम ही अपीयरेंस के अंदर एकदम ही बुरा है, पूरा काला उला मुंह किया हुआ है, लंगड़ाते हुए जो चल रहा है, और एकदम पीछे जो कथा में सबसे पहले आता है लेकिन पीछे बैठता है, और पूरी कथा खत्म होने के बाद में जाता है और बिल्कुल ध्यान से कथा सुनता है, ऐसा व्यक्ति कोई आपको दिखाई देगा समझ जाना वो हनुमान जी है। बोलो हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी ऐसे बैठ के कथा सुनते थे, नहीं तो कई बार हमारे को क्या होता है कि बड़ी बड़ी पंडाल के अंदर कई बार पत्नी फोर्स करती है तो बोलते चलो यार, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल जो भक्त हैं उनकी बात नहीं कर रहा है, वो कथा सुनने के लिए जाते हैं और पंडाल के अंदर सबसे लास्ट में कोना ढूंढते हैं और उस कोना में जाके बैठते हैं, और उधर भी पंडाल के अंदर एक खंभा लगा रहता है जिससे वो पूरा वो खंभे का सहारा लेके और ऐसा आके बैठ जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं जनरली ऐसा होता है कि जब कथा शुरू होती है और कथा में रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है कि क्या प्रसंग चल रहा है, तो क्या होता है नींद आता है, इमीडिएटली नींद आता है। तो वो आदमी उसी पर ऐसा लटके लटके और ऐसा सो जाता है और सोते सोते कभी कभी उसका मुंह खुला रहता है। और जनरली भारत में आप लोग जानते हो कि जब कथा का जो पंडाल होता है वो तो पूरी तरह प्रोटेक्टेड नहीं रहता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ लोग घूमते रहते हैं, यू नो कुत्ते उत्ते घूमते रहते हैं वहाँ पे, और मुंह खुला है और कुत्ता क्या होता है खंभा देख के एक्साइटेड हो जाता है। तो खंभा या टायर ये दो कुत्ते का फेवरेट स्थान है, तो वो वहाँ पे आँख बंद है मुंह खुला है अमृत धार अंदर जा रही है। और कथा खत्म होने के बाद लोग जिन्होंने कथा अच्छी तरह से सुनी है वो लोग बोलते हैं अरे यार क्या मजा आया, क्या आनंद आया, प्रभु जी ने क्या आज कथा की, और झरझर 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 बहती हुई अमृत धारा की तरह सी प्रवाह की कथा चल रही थी, इतना आनंद आया। तो भी सोचता है यार कथा तो अमृत धारा जैसी कुछ अंदर आ रही थी लेकिन थोड़ी थोड़ी खारी क्यों थी, कथा खारी लग रही थी मेरे को। तो ऐसा नहीं है, एकदम ध्यान से बैठ के और एकदम धैर्य रख के कि नहीं भगवान के दर्शन होंगे मेरे को, कथा सुन रहा हूँ आज समझ में नहीं आ रहा है कल समझ में जरूर आएगा, आज मैं माला कर रहा हूँ मेरा सिर घूम रहा है, माला में इंटरेस्ट नहीं है, फेथ नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कभी न कभी तो होगा, हम होंगे कामयाब एक दिन तो मैं कामयाब होऊंगा। और यही हमेशा हमको ये रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल, लेकिन प्रयास करना चाहिए कामयाब होऊंगा ऐसा करके, और वो छोड़ नहीं देना चाहिए कि ठीक है यार सबका होगा मेरा होगा, भरसक प्रयास करना चाहिए। और भरसक प्रयास करने के बाद भी कभी कभी सफलता नहीं मिलती, क्या कर सकते हैं, लेकिन वही सफलता न मिलने पे अगर अपना धैर्य टूट जाए तो कोई फायदा नहीं है, उस धैर्य को संभाल के और वो आगे बढ़ना चाहिए। तो कहते परम कृपालु तेनो ब्रजेंद्र नंदन कोने जन्मत प्रभु मोरे दिले न दर्शन, कभी तो मेरे को दर्शन मिलेगा यदि से ही महाप्रभु ना पाइबे कृपा धन की बराज की देह सब अकारण। वो कहेंगे लेकिन मेरे को चैतन्य महाप्रभु की अगर कृपा प्राप्त नहीं होगी तो किवा राज्य किवा देह, ये मेरे राज्य का मेरे देह का क्या फायदा, ये सब अकारण है, सब मैं त्याग दूंगा और मैं यहाँ से चले जाऊंगा। ये तहार प्रेम आरती देखी नु तो मिते तार एक प्रेम ले से नियत आमाते। और फिर इतना सब सुनने के बाद क्या होता है कि रामानंद राय का भी हृदय पिघल जाता है, वो सोचते हैं कि यार मेरा बॉस का क्या हालत हो रहा है, देखो बेचारा इसको कुछ भी कृपा नहीं मिल रहा है, चलो इसको कुछ कृपा दिलाने के लिए जाते हैं। तो रामानंद राय जाके सेकंड, पहले किसने प्रयास किया, सार्वभौम भट्टाचार्य जो गुरु है, और यहाँ पर रामानंद राय जो कि उनके एकदम कलीग एकदम प्रेमी स्निग्ध भक्त है विशाखा है वो नो रामानंद राय, वो आके और चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि हे महाप्रभु प्लीज नो बेचारे ने कितना कुछ किया आप एक बार उसको दर्शन दे दो। तो फिर चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु कहे तुम कृष्ण भक्त प्रधान तुमा के ही प्रीति करे से ही भाग्यवान। वो कहते हैं कि हाँ तुम भगवान के बहुत अच्छे भक्त हो और तुम्हारा जो साथ देगा वो महाभाग्यवान है, बस इतना कह के छोड़ दिया। बोला राजा महाभाग्यवान है, पर बोला पर मिल तो मिलूंगा नहीं राजा से, मिलूंगा नहीं भैया, महाभाग्यवान है वो उसका तुम्हारा। और इस तरह से करके और वो बहुत कुछ कहने लगे लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी नहीं मिले। और केवल दो मिनट में आपको और तीन, ये तो दो ही इंस्टॉलमेंट हुआ है और तीन मैं आप खुद बता देता हूँ कि इतना होने के बाद भी जब रामानंद राय वापस से गए और महाराज प्रताप रुद्र को बोला कि सॉरी प्रयास किया मैंने सफलता हाथ नहीं लगी, मैंने बहुत बोला चैतन्य महाप्रभु को लेकिन चैतन्य महाप्रभु टस से मस नहीं हो रहे, ही इज नॉट बजिंग, वो सुनने के लिए रेडी नहीं है, वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो सिर्फ वापस से उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा महाराज प्रताप रुद्र ने और वो लेटर लिख के सार्वभौम भट्टाचार्य को भेजा, बोला कि देखो अगर मेरे को चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिलने मिलेगा ना सार्वभौम भट्टाचार्य, कसम से बोलता हूँ मैं राज्य त्याग दूंगा और कान में अपना एक कुंडल धारण करके और मैं भिखारी बन जाऊंगा, यू नो ये भी एक, वो बोलते हैं मैं भिखारी बन जाऊंगा और मैं वहां से मैं चला जाऊंगा तो प्लीज मेरे को एक बार मिला लो। तो ऐसा जब लेटर मिलता है तो सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत घबरा जाते, बोलते हैं राजा अगर भिखारी बन जाएगा तो जगन्नाथ पुरी और उड़ीसा को संभालेगा कौन, और इतना अच्छा राजा है। तो डर के मारे बोलते हैं मैं तो एक बार चैतन्य महाप्रभु के पास गया, मेरे को तो फटकार के भगा दिया, अभी तो मेरी हिम्मत नहीं है। जैसे आप जाके आप महाराज को बोलो महाराज प्लीज ये व्यक्ति को इनिशिएशन दे दो, महाराज नहीं दूंगा अभी इनिशिएशन नहीं देना है मेरे को, तो नेक्स्ट टाइम जाने की हिम्मत नहीं होगी कि यार एक बार बोल दिया अभी क्या जाऊं मैं बार बार करके। तो उन्होंने क्या सोचा कि बहुत सारे भक्तों को लेके जाता हूं, तो क्या होता है महाप्रभु एक्साइट हो जाते हैं जब बहुत सारे भक्तों को देखते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य गए और सब भक्तों को बोला कि देखो आपसे एक निवेदन करता हूं, महाराज प्रताप रुद्र को मर्सी नहीं मिल रही है, आप सब भक्त लोग आप लोग चलो मेरे साथ और हम लोग जाके महाप्रभु को बोलेंगे, तब जाके महाप्रभु थोड़ा कुछ मर्सी देंगे। तो सब भक्त लोग बोले हाँ 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 चलो 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 हम लोग चलते। तो सारे सारे भक्त लोग गए और महाप्रभु तो क्या है ईश्वर है, अंदर से उनको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। तो इतने सारे लोग आए तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु खुश होने के बदले बोले इतने सारे लोग क्यों आ गए आज तुम लोग सुबह सुबह। तो सब लोग बोले अरे ये क्या हो गया, अरे तो उल्टा हो गया पासा, हम लोग कुछ और सोच के आए थे, महाप्रभु कुछ और मूड में, आज कुछ मूड ही उनका अलग है। तो नित्यानंद प्रभु साथ में थे लेकिन वो भी घबरा गए, सोचो नित्यानंद प्रभु जो अवधूत है वो डर गए, वो बोले नहीं 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 महाप्रभु हम लोग बस ऐसे ही आए आपका दर्शन करने के लिए सुबह सुबह, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और ये सब भक्त लोग आए हैं एक्चुअली आपसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आपसे डर रहे हैं, ऐसा कौन बोलता है? नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं कि देखो महाप्रभु ये भक्त लोग आए हैं आपसे कुछ बोलने के लिए लेकिन बेचारे लोग डर रहे हैं आपसे कुछ बोलते नहीं है। तो बोले अच्छा क्या बोलने आए बताओ। फिर किसी ने डर डर के मारे नित्यानंद प्रभु ने बोला कि वो राजा जो है ना कौन नहीं वो महाराज प्रताप रुद्र वो थोड़ा प्लीज उससे मिल लो आप ऐसा। तो बोले तुमको कितनी बार मैंने बोला है राजा का नाम मतलब मेरे सामने काल सर्प के समान है कोबरा है मेरे को नहीं मिलना उससे इतना। और बोला कि ठीक है तुम बोलते हो ना मिलोगे, अगर दामोदर बोलेगा मैं मिलना है तो मैं मिलूंगा नहीं तो नहीं मिलूंगा। अब दामोदर घबरा गए, दामोदर पंडित को लगा यार मेरा नाम किधर बीच में घुसेड़ दिया ये चैतन्य चरितामृत में। तो क्योंकि दामोदर क्या थे वो डांटते थे चैतन्य महाप्रभु को, उनका इतना प्रेम था कि चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं बैठो खाना खाओ तो चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लेते थे, ऐसा दामोदर करते थे। तो बोला दामोदर बोलेगा पर दामोदर भी घबरा गए ऐसा सुनने पे। दामोदर ने बोला तुम ही तो स्वतंत्र ईश्वर भैया मैं क्या करूं, तुम तो राजा हो तुम्हारी मतलब भगवान हो तुम्हारी जो इच्छा वो करो मैं तो फोर्स नहीं कर सकता। तो बोला ठीक है मैं नहीं मिलूंगा। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला यार अभी क्या क्या करें यार, अगर अच्छा चलो मिलेंगे नहीं एक निवेदन करता हूँ राजा खुश हो जाएगा, बेचारा वो अपना लाइफ देने के लिए जा रहा है आत्महत्या करने के लिए जा रहा है वो भिखारी बनने के लिए जा रहा है उसको रोको, और उसको रोकने का एक उपाय है कि आपका जो उतरिया है आपका जो वस्त्र है वो दे दो और वो वस्त्र मैं भिजवा देता हूँ, कम से कम वो वस्त्र देख के राजा रुक जाएगा और राजा मरेगा नहीं अपना प्राण नहीं देगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हाँ ये ठीक है चलो ये ले लो, वो दे दिया और वो उतरिया भेजा और तुरंत महाराज प्रताप रुद्र ने उस उतरिया को अपने सर पे लगाया और अपने उसमें अल्टर में रख के और उसको वर्शिप करते थे लेकिन कृपा नहीं मिली। सेकेंड टाइम वापस से रामानंद राय गए उनके पास और बोला महाराज महाप्रभु प्लीज कृपा दो। तो बोला कि नहीं कृपा दूंगा। तो बोला अरे कुछ तो करो। तो बोले ठीक है एक बेटा जो होता है बाप जो होता है वो बेटे के रूप में जीता है तो उसके पुत्र को ला उसके पुत्र को मैं आलिंगन करूंगा। तो उसके पुत्र को लाया और उसको महाप्रभु ने आलिंगन किया और वो पुत्र वापस से निकल के जब महाराज प्रताप रुद्र के पास गया और महाराज प्रताप रुद्र ने उसको आलिंगन किया तो बहुत एक्सटेसी उसका हो गया और बाद में वहाँ बहुत एकदम भाव विभोर हो गए वो। तो इस प्रकार से वो मर्सी देने लगे। फिर तीसरी बार जब रथ यात्रा थी तो रथ यात्रा के अंदर महाराज प्रताप रुद्र ने झाड़ू लगाना शुरू किया तो उनकी ये ह्यूमिलिटी और उनका इस प्रकार का दैन्य भाव देख के महाप्रभु मन में प्रसन्न हुए लेकिन ऊपर से दिखाए कि नहीं मैं प्रसन्न नहीं हूँ और वो खड़े रहे। और फिर जब उनका बेड़ा कीर्तन पास्ट टाइम जब कीर्तन चलने लगा तो उस कीर्तन में घूमते 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 महाप्रभु तुरंत आके और महाराज प्रताप रुद्र के पास में गिर गए और महाराज प्रताप रुद्र ने उनको उठाया तो जैसे ही देखा कि राजा ने उठाया है पूरा वापस से उनको बोला हाथ मत लगा मेरे हाथ मत लगा और वहां से भगा दिया। तो वापस से राजा प्रताप रुद्र डर गए बोले एक दो मर्सी दिया वापस से फटकारा। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोला डरो मत धीरे 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 उनका स्टाइल है देंगे देंगे। अभी तुमको एक आइडिया बताता हूँ अभी रथ यात्रा का प्रोसेशन जाएगा उस प्रोसेशन के बाद में महाप्रभु थक जाएंगे और थकने के बाद वो जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में जाके विश्राम करेंगे वहां पर तुम राजा का वेश को त्याग दो और एक साधारण भक्त का वेश लेके और तुम वहां पर जाओ और तुम वहां पर उनकी सेवा करो वहां पर तुमको मर्सी मिलेगी मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से वो जाने के लिए बोलते हैं और वहाँ पे वो जाते हैं और जब महाप्रभु जब वहाँ पे सो जाते हैं उनको नींद आ जाती है और वो वहाँ पे उनके पैर दबाते हैं और पैर दबाते दबाते वो वहाँ पे गोपी गीत गाते हैं, जयति देतिकम जन्म ना व्रज। तो वो जब गीत गाते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं और गाओ और गाओ। तो और गाते गाते जब वो इस वर्ष पे आते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीरितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृणन्ति ये भूरिदाजना। तो जब सुनते हैं तो महाप्रभु उछलते हैं एकदम वहां से और चिल्ला के बोलते भूरिदा भूरिदा भूरिदा, और बड़ा एकदम प्रसन्न होके और उनको इतना आनंद आता है उनके, और वो कहते हैं कि भाई तू कौन है यू नो, और उसको आलिंगन कर लेते हैं। और बहुत अच्छा प्रसंग है पर हमारे पास क्योंकि समय नहीं है आई विल स्टॉप हियर, बट वो कहते हैं महाप्रभु उसको कि अरे तुम कौन है भैया, तुमने मेरे को तुम्ही मोरा दिले बहु अमूल्य रतन मोर किचु देते नहीं दिली नु आलिंगन। वो कहते हैं अरे तुमने मुझको इतना अमूल्य रतन दिया है भगवान का, ये मेरे को याद दिलाया तुमने, गोपी गीत गा रहे हो भगवान श्री कृष्ण की मेरे को याद आ गई, और मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं, इसके लिए मैं तुमको क्या दूंगा आलिंगन दूंगा तुमको, मैं तुमको एम्ब्रेस करूंगा। और ऐसा उठ के तुरंत उन्होंने क्या किया, एम्ब्रेस कर दिया। और महाराज प्रताप रुद्र यही चाहते थे कि राजा का एक बार एम्ब्रेस मिल जाए, तो इस प्रकार से एम्ब्रेस किया और दोनों की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। ए तो बोली से श्लोक पढ़े बार बार दुई जनेर अंग कंप नेत्र जल धार, कि अंग कंपन होने लगा और नेत्रों से आंसू बहने लगे, दोनों लोग बस रोने लगे और रोते रोते एक दूसरे के सामने गा रहे थे और किसी को पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा था। और ये सब देख के सभी भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन है तो मेरे को ये कृष्ण लीलामृत सुना रहे हो, तुम कौन हो? तो राजा कहे आमी तोमर दासेर अनुदास भृत्य भृत्य करो ई मोर आस। बोले मैं तो तुम्हारे दासों का दास हूँ और तुम मुझे अपने दासों के दास का दासों के दास का दास बनाओ, मेरा यही अभिलाष है। तो यही प्रार्थना हमारी भी होनी चाहिए कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु दासेर अनुदास प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, कि नरोत्तम दास ठाकुर हमको ये सिखाते हैं किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, हमको भगवान के भक्तों के दासों के दासों के दासों का दास बन के जब हम सेवा करेंगे तो शायद हो सकता है कि इस प्रकार से एक एक नॉन एनवियसनेस एक ह्यूमिलिटी एक धैर्य रख के और एक इतना सब कुछ करके सहन करके और हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो अवश्य हमको श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री रामानंद राय की जय, सार्वभौम भट्टाचार्य की जय, महाराज प्रताप रुद्र राय की जय, गौर प्रेमानंद जय। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जय श्री प्रभुपाद की जय।